Cambridge Assessment, International Education, Cambridge IGCSE, March 2024 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
छात्रों, आज हम विश्व प्रसिद्ध जासूसी संग्रहालय देखने जा रहे हैं. वहां आपको प्रसिद्ध जासूसों द्वारा इस्तेमाल की गई लिपस्टिक पिस्तौल, खुफिया कैमरे, माइक्रोफोन वाले जूते और चमत्कारी गाड़ी जैसी चीजें देखने को मिलेंगी. आपको जेम्स बॉन्ड और माता हारी जैसे लोकप्रिय जासूसों के कारनामों की प्रदर्शनी देखने के अलावा जासूसी के खेलों में भाग लेकर जासूसी करने का मौका भी मिलेगा. जासूसी की दुनिया का मजा लें और शाम को 5 बजे तक यहीं लौट आएं. छात्रों, आज हम विश्व प्रसिद्ध जासूसी संग्रहालय देखने जा रहे हैं. वहां आपको प्रसिद्ध जासूसों द्वारा इस्तेमाल की गई लिपस्टिक पिस्तौल, खुफिया कैमरे, माइक्रोफोन वाले जूते और चमत्कारी गाड़ी जैसी चीजें देखने को मिलेंगी. आपको जेम्स बॉन्ड और माता हारी जैसे लोकप्रिय जासूसों के कारनामों की प्रदर्शनी देखने के अलावा जासूसी के खेलों में भाग लेकर जासूसी करने का मौका भी मिलेगा. जासूसी की दुनिया का मजा लें और शाम को 5 बजे तक यहीं लौट आएं.
संवाद दो.
नमस्ते, मुझे एक शिलालेख की प्रति चाहिए.
शिलालेखों की प्रतियां तो पांडुलिपि विभाग में हैं.
वो किधर है?
आप वहां नहीं जा सकती. संदर्भ डेस्क पर जाकर पुस्तक सूची से पांडुलिपि संख्या नोट कर लाइए. प्रतिलिपि हम बनाकर देंगे.
ठीक है.
क्या आपके पास पुस्तकालय की सदस्यता है?
ओह, माफ करें, ये रहा कार्ड. नमस्ते, मुझे एक शिलालेख की प्रति चाहिए.
शिलालेखों की प्रतियां तो पांडुलिपि विभाग में हैं.
वो किधर है?
आप वहां नहीं जा सकती. संदर्भ डेस्क पर जाकर पुस्तक सूची से पांडुलिपि संख्या नोट कर लाइए. प्रतिलिपि हम बनाकर देंगे.
ठीक है.
क्या आपके पास पुस्तकालय की सदस्यता है?
ओह, माफ करें, ये रहा कार्ड.
संवाद तीन.
हेलो आशीष, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज का सांस्कृतिक महोत्सव है. इस बार हमने ग्रेटा थुनबर्ग को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया है. जलवायु परिवर्तन की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, पर पर्यावरण की बात दूसरी बड़ी खबरों के शोर में दबती जा रही है. अरे, ये बताना तो भूल ही गई कि कार्यक्रम पेश करने का जिम्मा भी मुझे ही मिला है, इसलिए कोई बहाना नहीं, तुम्हें जरूर आना है. सुनते ही फोन करना. बाय. हेलो आशीष, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज का सांस्कृतिक महोत्सव है। इस बार हमने ग्रेटा थुनबर्ग को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया है। जलवायु परिवर्तन की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, पर पर्यावरण की बात दूसरी बड़ी खबरों के शोर में दबती जा रही है। अरे, ये बताना तो भूल ही गई कि कार्यक्रम पेश करने का जिम्मा भी मुझे ही मिला है, इसलिए कोई बहाना नहीं, तुम्हें जरूर आना है। सुनते ही फोन करना। बाय।
संवाद 4।
भाई साहब, इस शॉपिंग मॉल में कोई डाकखाना भी है क्या?
नहीं, डाकखाना तो मैंने नहीं देखा। आपको करना क्या है?
किसी के पास कुछ भेजना था।
तो आप कुरियर से क्यों नहीं भेज देती?
पता नहीं, मुझे उन पर भरोसा नहीं होता।
तब तो आपको स्टेशन जाना पड़ेगा।
क्यों? यहाँ के लोग डाक नहीं भेजते?
जी, बस ऐसा ही है।
भाई साहब, इस शॉपिंग मॉल में कोई डाकखाना भी है क्या?
नहीं, डाकखाना तो मैंने नहीं देखा। आपको करना क्या है?
किसी के पास कुछ भेजना था।
तो आप कुरियर से क्यों नहीं भेज देती?
पता नहीं, मुझे उन पर भरोसा नहीं होता।
तब तो आपको स्टेशन जाना पड़ेगा।
क्यों? यहाँ के लोग डाक नहीं भेजते?
जी, बस ऐसा ही है।
संवाद 5।
भारत लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति और विरासत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रहा है। केंद्र के लिए जमीन लुम्बिनी विकास ट्रस्ट से मिल रही है और इसके निर्माण की पहल दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने की है। महायान और वज्रयान के भिक्षुओं के मंत्रोच्चार के बीच हुए शिलान्यास के बीच भारत और नेपाल के नेताओं ने केंद्र की रूपरेखा का अनावरण किया। इसका भवन कमल के पुष्प की आकृति का होगा और इसकी ऊर्जा खपत से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। भारत लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति और विरासत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रहा है। केंद्र के लिए जमीन लुम्बिनी विकास ट्रस्ट से मिल रही है और इसके निर्माण की पहल दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने की है। महायान और वज्रयान के भिक्षुओं के मंत्रोच्चार के बीच हुए शिलान्यास के बीच भारत और नेपाल के नेताओं ने केंद्र की रूपरेखा का अनावरण किया। इसका भवन कमल के पुष्प की आकृति का होगा और इसकी ऊर्जा खपत से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा।
संवाद 6।
पारुल, गर्मी की छुट्टियों में मुझे घर जाना है।
तो जाओ, मैं क्या करूं?
तुम ये करो कि मुझे कोई अच्छी सी किताब बताओ जिसके सहारे रास्ता आसानी से कट सके।
ठीक है, केतन जगत का एक नया उपन्यास आया है, उसे ले जाओ।
नहीं पारुल, केतन जगत के कथानक वही घिसे पिटे होते हैं।
तो फिर कोई ऐतिहासिक उपन्यास ले जाओ।
इतिहास के लिए परीक्षा क्या कम थी, अब उपन्यास भी पढ़ो।
तो फिर क्या पढ़ोगे, कोई कविता या गजल संग्रह ले जाओ।
पारुल, गर्मी की छुट्टियों में मुझे घर जाना है।
तो जाओ, मैं क्या करूं?
तुम ये करो कि मुझे कोई अच्छी सी किताब बताओ जिसके सहारे रास्ता आसानी से कट सके।
ठीक है, केतन जगत का एक नया उपन्यास आया है, उसे ले जाओ।
नहीं पारुल, केतन जगत के कथानक वही घिसे पिटे होते हैं।
तो फिर कोई ऐतिहासिक उपन्यास ले जाओ।
इतिहास के लिए परीक्षा क्या कम थी, अब उपन्यास भी पढ़ो।
तो फिर क्या पढ़ोगे, कोई कविता या गजल संग्रह ले जाओ।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न सात।
तुर्की के दर्शनीय प्रदेश कैपेडोसिया के आकर्षणों का परिचय देने वाली इस वार्ता को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। यह वार्ता आपको दो बार सुनाई जाएगी।
मध्य तुर्की में करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखियों के लावे की परतों से बना एक पठारी प्रदेश है। इसे प्राचीन युग में कैपाडोसिया के नाम से जाना जाता था। लावे से निकले खनिजों के क्षार, पानी के कटाव और हवा के बहाव ने बलुआ चट्टानों की नरम परतों को तराशा है, जिससे ऐसी चमत्कारिक आकृतियां बन गई हैं मानो किसी ने मीनारों, गुंबदों और गुफाओं के शहर बसा दिए हों। कैपाडोसिया की मीनारें लोगों को रहस्यमयी लगी होंगी, इसलिए इनका नाम परी मीनार पड़ गया। यहाँ के शहरों के नाम भी रहस्यमय लगते हैं, जैसे केसरी, अकसराय और नीड। प्रकृति की बनाई संरचनाओं को देखकर लोगों ने भी चट्टानों को तराशना और भूमिगत गिरजे, दरगाह और घर बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ विभिन्न सभ्यताओं और साम्राज्यों के अवशेष मिलते हैं। यूरोप और एशिया की सीमा पर पड़ने के कारण यहाँ सुरक्षा एक चुनौती थी, इसलिए लोगों ने चट्टानों को काटकर भूमिगत शहर भी बसाए। शायद लोगों को यह जानकारी भी थी कि वे भूमि के नीचे सात परतों तक जा सकते हैं, इसलिए सात मंजिलों तक गहरे बहुमंजिला मकान बनाए गए हैं। भूमिगत शहरों में जरूरत की सारी चीजों का प्रबंध होता था, जैसे कुएं, रसोई घर, पूजा स्थल, शौचालय और हवा के आवागमन के रास्ते, ताकि बाहर से किसी चीज की जरूरत के बिना लंबे समय तक रहा जा सके। कैपाडोसिया के सबसे बड़े शहर केसरी के पास हुई खुदाई से मिले व्यावसायिक शिलालेख से पता चलता है कि असीरियाई लोगों ने यहाँ ईसा से 4000 वर्ष पहले एक व्यापार संगठन शुरू किया था, जिसके जरिए सोने, चांदी और तांबे का व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य के जमाने में ईसाई प्रचारकों ने यहीं आकर शरण ली थी। चट्टान काटकर बनाए गए उनके गिरजाघरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ग्यारहवीं सदी में यहाँ तुर्क आए और उन्होंने मस्जिदें और सरायें बनवाईं। इस पूरे क्षेत्र के विहंगम दृश्य का मजा लेने के लिए हवाई गुब्बारों से सैर करना सैलानियों में सबसे लोकप्रिय है।
अभ्यास दो की यह वार्ता अब आप फिर से सुनेंगे।
मध्य तुर्की में करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखियों के लावे की परतों से बना एक पठारी प्रदेश है। इसे प्राचीन युग में कैपाडोसिया के नाम से जाना जाता था। लावे से निकले खनिजों के क्षार, पानी के कटाव और हवा के बहाव ने बलुआ चट्टानों की नरम परतों को तराशा है, जिससे ऐसी चमत्कारिक आकृतियां बन गई हैं मानो किसी ने मीनारों, गुंबदों और गुफाओं के शहर बसा दिए हों। कैपाडोसिया की मीनारें लोगों को रहस्यमयी लगी होंगी, इसलिए इनका नाम परी मीनार पड़ गया। यहाँ के शहरों के नाम भी रहस्यमय लगते हैं, जैसे केसरी, अकसराय और नीड। प्रकृति की बनाई संरचनाओं को देखकर लोगों ने भी चट्टानों को तराशना और भूमिगत गिरजे, दरगाह और घर बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ विभिन्न सभ्यताओं और साम्राज्यों के अवशेष मिलते हैं। यूरोप और एशिया की सीमा पर पड़ने के कारण यहाँ सुरक्षा एक चुनौती थी, इसलिए लोगों ने चट्टानों को काटकर भूमिगत शहर भी बसाए। शायद लोगों को यह जानकारी भी थी कि वे भूमि के नीचे 7 परतों तक जा सकते हैं, इसलिए 7 मंजिलों तक गहरे बहुमंजिला मकान बनाए गए हैं। भूमिगत शहरों में जरूरत की सारी चीजों का प्रबंध होता था, जैसे कुएं, रसोई घर, पूजा स्थल, शौचालय और हवा के आवागमन के रास्ते, ताकि बाहर से किसी चीज की जरूरत के बिना लंबे समय तक रहा जा सके। कैपाडोसिया के सबसे बड़े शहर केसरी के पास हुई खुदाई से मिले व्यावसायिक शिलालेख से पता चलता है कि असीरियाई लोगों ने यहाँ ईसा से 4000 वर्ष पहले एक व्यापार संगठन शुरू किया था, जिसके जरिए सोने, चांदी और तांबे का व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य के जमाने में ईसाई प्रचारकों ने यहीं आकर शरण ली थी। चट्टान काटकर बनाए गए उनके गिरजाघरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। 11वीं सदी में यहाँ तुर्क आए और उन्होंने मस्जिदें और सरायें बनवाईं। इस पूरे क्षेत्र के विहंगम दृश्य का मजा लेने के लिए हवाई गुब्बारों से सैर करना सैलानियों में सबसे लोकप्रिय है। अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3 प्रश्न 8 से 15।
जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या समर्थ के साथ पत्रकार दिलीप देव की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। ये बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
डॉक्टर दिव्या समर्थ, आरोग्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद दिलीप जी।
दिव्या जी, विश्व मोटापा एटलस के अनुसार इस दशक के अंत तक दुनिया के लगभग 100 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे और लगभग 50 लाख लोग मोटापे से होने वाली बीमारियों से मरने लगेंगे। क्या मोटापे की समस्या इतनी भयावह हो गई है?
जी दिलीप जी, इस दशक के अंत तक दुनिया की हर 5वीं स्त्री और हर 7वां पुरुष मोटापे का शिकार हो जाएंगे। बच्चों में ये बीमारी और भी तेजी से फैल रही है, इसलिए ये दुनिया के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।
कोई मोटा है या नहीं, इसे तय करने का आधार क्या है?
मोटापे को आपके बॉडी मास सूचकांक से तय किया जाता है। पहले शरीर का वजन ले लीजिए, उसके बाद अपना कद नापिए, फिर कद को 2 से गुणा कीजिए और शरीर के वजन को उससे भाग दे दीजिए। जो भागफल आएगा उसे बॉडी मास सूचकांक कहते हैं। आपका सूचकांक 25 से ज्यादा हो तो आप मोटे माने जाते हैं और 18.5 से कम हो तो ले।
तो मोटापे के मुख्य कारण क्या है? क्या ये समस्या कुछ खास लोगों को होती है या फिर किसी का भी वजन बढ़ सकता है?
वजन कई कारणों से बढ़ सकता है, पर सबसे प्रमुख कारण है खान पान के जरिए जरूरत से अधिक कैलोरी या ऊर्जा लेना। हम कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं ये हमारे परिश्रम, शरीर के रखरखाव, पाचन तंत्र की सक्रियता और सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। आर्थिक और वैज्ञानिक उन्नति के कारण आजकल खान पान सुलभ हो गया है और मशीनों ने कामकाज को आसान बना दिया है, इसलिए मोटापा फैल रहा है।
पर कुछ लोग खूब और मनचाहा खाने और व्यायाम नहीं करने पर भी मोटे नहीं होते और कुछ लोग सारी सावधानियां बरतने पर भी मोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों?
इसकी वजह मानव जीन है। अब तक 50 से अधिक ऐसे जीनों की पहचान कर ली गई है जो मोटापे का खतरा बढ़ाते हैं। इनमें MCNR नाम का जीन भी शामिल है जिसमें होने वाले परिवर्तनों को मोटापे का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ये जीन भूख बढ़ाता है, खपत के बजाय ऊर्जा जमा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और तनाव के क्षणों में खाने की इच्छा बढ़ाता है। जिन लोगों के शरीर में ये जीन होता है और खाने पीने की सुलभता होती है, वे कोशिशें करने पर भी पतले नहीं रह पाते।
वजन बढ़ने या मोटा होने के नुकसान क्या हैं? कई मोटे लोग भी दूसरों से ज्यादा चुस्त और स्वस्थ होते हैं।
वजन बढ़ने से मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जोड़ों का दर्द और सुस्ती भी बढ़ती है। पर सबसे चिंता की बात यह है कि इससे आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, जिससे कई तरह के मनोरोग हो सकते हैं।
दिव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। डॉक्टर दिव्या समर्थ, आरोग्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद दिलीप जी।
दिव्या जी, विश्व मोटापा एटलस के अनुसार इस दशक के अंत तक दुनिया के लगभग 100 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे और लगभग 50 लाख लोग मोटापे से होने वाली बीमारियों से मरने लगेंगे। क्या मोटापे की समस्या इतनी भयावह हो गई है?
जी दिलीप जी, इस दशक के अंत तक दुनिया की हर 5वीं स्त्री और हर 7वां पुरुष मोटापे का शिकार हो जाएंगे। बच्चों में ये बीमारी और भी तेजी से फैल रही है, इसलिए ये दुनिया के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।
कोई मोटा है या नहीं, इसे तय करने का आधार क्या है?
मोटापे को आपके बॉडी मास सूचकांक से तय किया जाता है। पहले शरीर का वजन ले लीजिए, उसके बाद अपना कद नापिए, फिर कद को 2 से गुणा कीजिए और शरीर के वजन को उससे भाग दे दीजिए। जो भागफल आएगा उसे बॉडी मास सूचकांक कहते हैं। आपका सूचकांक 25 से ज्यादा हो तो आप मोटे माने जाते हैं और 18.5 से कम हो तो पतले।
तो मोटापे के मुख्य कारण क्या है? क्या ये समस्या कुछ खास लोगों को होती है या फिर किसी का भी वजन बढ़ सकता है?
वजन कई कारणों से बढ़ सकता है, पर सबसे प्रमुख कारण है खान पान के जरिए जरूरत से अधिक कैलोरी या ऊर्जा लेना। हम कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं ये हमारे परिश्रम, शरीर के रखरखाव, पाचन तंत्र की सक्रियता और सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। आर्थिक और वैज्ञानिक उन्नति के कारण आजकल खान पान सुलभ हो गया है और मशीनों ने कामकाज को आसान बना दिया है, इसलिए मोटापा फैल रहा है।
पर कुछ लोग खूब और मनचाहा खाने और व्यायाम नहीं करने पर भी मोटे नहीं होते और कुछ लोग सारी सावधानियां बरतने पर भी मोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों?
इसकी वजह मानव जीन है। अब तक 50 से अधिक ऐसे जीनों की पहचान कर ली गई है जो मोटापे का खतरा बढ़ाते हैं। इनमें MCNR नाम का जीन भी शामिल है जिसमें होने वाले परिवर्तनों को मोटापे का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ये जीन भूख बढ़ाता है। खपत के बजाय ऊर्जा जमा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और तनाव के क्षणों में खाने की इच्छा बढ़ाता है। जिन लोगों के शरीर में ये जीन होता है और खाने पीने की सुलभता होती है, वे कोशिशें करने पर भी पतले नहीं रह पाते।
वजन बढ़ने या मोटा होने के नुकसान क्या हैं? कई मोटे लोग भी दूसरों से ज्यादा चुस्त और स्वस्थ होते हैं।
वजन बढ़ने से मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जोड़ों का दर्द और सुस्ती भी बढ़ती है। पर सबसे चिंता की बात यह है कि इससे आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, जिससे कई तरह के मनोरोग हो सकते हैं।
दिव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास चार के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास चार, प्रश्न 16 से 23।
साहित्य और सिनेमा पर दो वक्ताओं की बातचीत को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
साहित्य अभिव्यक्ति का आदिम माध्यम है, जबकि सिनेमा तकनीक आधारित और नया। साहित्य को सिनेमा की जरूरत है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन सिनेमा का काम साहित्य के बिना नहीं चल सकता। हिंदी लेखकों में सिनेमा को लेकर कभी सम्मान भाव नहीं रहा। उनके लिए सिनेमा की दुनिया हमेशा बदनाम गली की तरह रही है। वहां जाने का अर्थ साहित्य के ऊंचे और पवित्र आसन से नीचे उतरना माना जाता रहा है। साहित्य का उद्देश्य व्यवसाय नहीं है, पर सिनेमा का काम बिना व्यवसाय के चल नहीं सकता। इसलिए यह भी माना जाता है, और कुछ हद तक ठीक भी है, कि सिनेमा में साहित्य को व्यावसायिक समझौता करना ही पड़ता है।
लेखकों के इस दृष्टिकोण की जड़ें सिनेमा के प्रति हिंदी समाज की मानसिकता में खोजी जा सकती हैं। हिंदी समाज में स्वांग नौटंकी और नृत्य संगीत के लिए सम्मान भाव कभी नहीं रहा। ग्लैमर और पैसा जुड़ जाने के कारण सिनेमा के प्रति समाज का रवैया थोड़ा बदला है, लेकिन साहित्यकारों का सिनेमा के प्रति जो रवैया पहले था उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। हर कथाकार ये तो चाहता है कि उसकी कहानी पर फिल्म बने। कवि की भी इच्छा रहती है कि उसकी कविता सिनेमा के सहारे जन जन तक पहुंचे, लेकिन सीधे तौर पर उससे जुड़ने में उसे परहेज अब भी है।
प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर जैसे कथाकार सिनेमा में गए जरूर, पर जल्दी ही साहित्य की दुनिया में लौट आए। आज जावेद अख्तर, गुलजार और प्रसून जोशी जैसे गीतकारों को स्टार की हैसियत तो प्राप्त है, लेकिन उनकी जगह साहित्य के ऊंचे और पवित्र आसन पर हरगिज नहीं है। इन सब का कारण क्या है? क्या साहित्य और सिनेमा का कोई सहज संवाद धर्मी संबंध संभव नहीं? क्या इसमें मुख्य बाधा वह व्यावसायिकता है, जिसके बिना सिनेमा की दुनिया भले कायम न रह सके, साहित्य के लिए उसमें फंसना अपने आप को नष्ट करना है?
साहित्य और सिनेमा में एक बुनियादी अंतर यह है कि सिनेमा एक सामूहिक काम है। कहानी, संवाद, पटकथा, गीत संगीत, अभिनय, निर्देशन, छायांकन आदि कला रूपों के कुशल संयोजन का नाम ही सिनेमा है। इसमें बड़ी टीम, बड़ी पूंजी और नए नए तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। एक फिल्म के विफल होने का मतलब है बड़ी पूंजी का डूब जाना। साहित्य सृजन का काम इससे भिन्न है। लेखक में प्रतिभा और जीवन दृष्टि के साथ मेहनत करने की क्षमता है तो वह साहित्य सृजन कर सकता है। कोई साहित्यिक कृति विफल होती है तो एक लेखक विफल होता है।
हिंदी सिनेमा और साहित्य का संबंध दो तरह से है। कुछ लेखक फिल्मों के लिए गीत और कहानी लिखने गए और फिल्मकारों की शर्त पर लिखते रहे और वहीं के होकर रह गए, जैसे नरेंद्र शर्मा, शैलेंद्र, साहिर, प्रदीप, राही मासूम, रजा। सिनेमा में जाकर इनका साहित्य सृजन कितना प्रभावित हुआ ये तो शोध का विषय है, पर इतना तय है कि इनके स्पर्श से सिनेमा जरूर सुंदर हुआ। कुछ लेखकों की कहानी को फिल्मकारों ने चुना और लेखक को भागीदार बनाकर तीसरी कसम और देवदास जैसी यादगार फिल्में बनाई गईं। पर लेखक ऐसी फिल्में नहीं लिख पाए जो यादगार कही जा सके।
कुंवर नारायण का कहना है कि सिनेमा साहित्य का अनुवाद नहीं होता, पर फिल्मांकन के लिए साहित्य कथा का मौलिक स्वरूप ही बदल डाला जाए ये उचित नहीं। साहित्य और सिनेमा पर बात करते हुए गुलजार ने एक बार कहा था कि सिनेमा की तुलना में साहित्य का प्रभाव ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। एक फिल्म के जरिए हम पर जो प्रभाव पड़ता है वो कई कलाओं का होता है, जबकि साहित्य हमारी कल्पना को जगाकर सीधा असर करता है।
वैसे टाइटैनिक जैसी कुछ फिल्में फिल्म होने के बावजूद अपने प्रभाव में कविता जैसी होती हैं। अच्छे फिल्मकारों ने सिनेमा को साहित्य के करीब लाकर उसमें साहित्य का प्रभाव पैदा करने की कोशिश भी की है। इसके लिए उन्होंने जीवन के अछूते प्रसंगों को बहुत गहराई से छूने की कोशिश की है। समकालीन हिंदी कथा साहित्य और हिंदी सिनेमा पर इस दृष्टि से देखने पर कई बार सिनेमा आगे निकलता दिखाई देता है। अभ्यास चार की इस बातचीत को अब आप फिर से सुनेंगे। साहित्य अभिव्यक्ति का आदिम माध्यम है, जबकि सिनेमा तकनीक आधारित और नया। साहित्य को सिनेमा की जरूरत है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन सिनेमा का काम साहित्य के बिना नहीं चल सकता। हिंदी लेखकों में सिनेमा को लेकर कभी सम्मान भाव नहीं रहा। उनके लिए सिनेमा की दुनिया हमेशा बदनाम गली की तरह रही है। वहां जाने का अर्थ साहित्य के ऊंचे और पवित्र आसन से नीचे उतरना माना जाता रहा है। साहित्य का उद्देश्य व्यवसाय नहीं है, पर सिनेमा का काम बिना व्यवसाय के चल नहीं सकता। इसलिए यह भी माना जाता है और कुछ हद तक ठीक भी है कि सिनेमा में साहित्य को व्यावसायिक समझौता करना ही पड़ता है।
लेखकों के इस दृष्टिकोण की जड़ें सिनेमा के प्रति हिंदी समाज की मानसिकता में खोजी जा सकती हैं। हिंदी समाज में स्वांग नौटंकी और नृत्य संगीत के लिए सम्मान भाव कभी नहीं रहा। ग्लैमर और पैसा जुड़ जाने के कारण सिनेमा के प्रति समाज का रवैया थोड़ा बदला है, लेकिन साहित्यकारों का सिनेमा के प्रति जो रवैया पहले था उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। हर कथाकार ये तो चाहता है कि उसकी कहानी पर फिल्म बने। कवि की भी इच्छा रहती है कि उसकी कविता सिनेमा के सहारे जन जन तक पहुंचे, लेकिन सीधे तौर पर उससे जुड़ने में उसे परहेज अब भी है।
प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर जैसे कथाकार सिनेमा में गए जरूर, पर जल्दी ही साहित्य की दुनिया में लौट आए। आज जावेद अख्तर, गुलजार और प्रसून जोशी जैसे गीतकारों को स्टार की हैसियत तो प्राप्त है, लेकिन उनकी जगह साहित्य के ऊंचे और पवित्र आसन पर हरगिज नहीं है। इन सब का कारण क्या है? क्या साहित्य और सिनेमा का कोई सहज संवाद धर्मी संबंध संभव नहीं? क्या इसमें मुख्य बाधा वह व्यावसायिकता है जिसके बिना सिनेमा की दुनिया भले कायम न रह सके, साहित्य के लिए उसमें फंसना अपने आप को नष्ट करना है?
साहित्य और सिनेमा में एक बुनियादी अंतर यह है कि सिनेमा एक सामूहिक काम है। कहानी, संवाद, पटकथा, गीत संगीत, अभिनय, निर्देशन, छायांकन आदि कला रूपों के कुशल संयोजन का नाम ही सिनेमा है। इसमें बड़ी टीम, बड़ी पूंजी और नए नए तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। एक फिल्म के विफल होने का मतलब है बड़ी पूंजी का डूब जाना। साहित्य सृजन का काम इससे भिन्न है। लेखक में प्रतिभा और जीवन दृष्टि के साथ मेहनत करने की क्षमता है तो वह साहित्य सृजन कर सकता है। कोई साहित्यिक कृति विफल होती है तो एक लेखक विफल होता है।
हिंदी सिनेमा और साहित्य का संबंध दो तरह से है। कुछ लेखक फिल्मों के लिए गीत और कहानी लिखने गए और फिल्मकारों की शर्त पर लिखते रहे और वहीं के होकर रह गए, जैसे नरेंद्र शर्मा, शैलेंद्र, साहिर, प्रदीप, राही मासूम रजा। सिनेमा में जाकर इनका साहित्य सृजन कितना प्रभावित हुआ ये तो शोध का विषय है, पर इतना तय है कि इनके स्पर्श से सिनेमा जरूर सुंदर हुआ। कुछ लेखकों की कहानी को फिल्मकारों ने चुना और लेखक को भागीदार बनाकर तीसरी कसम और देवदास जैसी यादगार फिल्में बनाई गईं, पर लेखक ऐसी फिल्में नहीं लिख पाए जो यादगार कही जा सके।
कुंवर नारायण का कहना है कि सिनेमा साहित्य का अनुवाद नहीं होता, पर फिल्मांकन के लिए साहित्य कथा का मौलिक स्वरूप ही बदल डाला जाए ये उचित नहीं। साहित्य और सिनेमा पर बात करते हुए गुलजार ने एक बार कहा था कि सिनेमा की तुलना में साहित्य का प्रभाव ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। एक फिल्म के जरिए हम पर जो प्रभाव पड़ता है वो कई कलाओं का होता है, जबकि साहित्य हमारी कल्पना को जगाकर सीधा असर करता है।
वैसे टाइटैनिक जैसी कुछ फिल्में फिल्म होने के बावजूद अपने प्रभाव में कविता जैसी होती हैं। अच्छे फिल्मकारों ने सिनेमा को साहित्य के करीब लाकर उसमें साहित्य का प्रभाव पैदा करने की कोशिश भी की है। इसके लिए उन्होंने जीवन के अछूते प्रसंगों को बहुत गहराई से छूने की कोशिश की है। समकालीन हिंदी कथा साहित्य और हिंदी सिनेमा पर इस दृष्टि से देखने पर कई बार सिनेमा आगे निकलता दिखाई देता है।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
This is the end of the examination.